शांति आज की मुरली लगभग पवित्रता के ऊपर ही थी और आज की मुरली में जो गीत है तू प्यार का सागर है उसके बाद से लेकर और मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे हैं ना, इसके बीच में अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग 60 बार पवित्रता शब्द आया हुआ है आज के मुरली में। इतनी खास है आज की मुरली। तो जैसा कि बाबा ने कहा कि यदि आप पवित्रता का कंगन बांधो है ना तो राज तिलक मिल जाएगा। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि पावन बनने की क्या करो, प्रतिज्ञा करो, है ना, प्रॉमिस करना है ना। तो बाहर दुनिया में कहते हैं है ना, गीत है ना, कि मिलने की तुम कोशिश करना और क्या नहीं करना, वादा नहीं करना। क्यों क्यों नहीं करना, क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं है ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा की विधि से हमें पावन बनना है। तो क्यों ऐसा है, क्यों प्रतिज्ञा करना आवश्यक है, बताएंगे कोई? क्योंकि और कोई भी विधि ही नहीं है। जैसे कोई ऑप्शन होता है ना कि यदि आप यहां सक्सेस नहीं हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पवित्रता के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। स्वयं बाबा भी इसके बिना स्वर की स्थापना नहीं कर सकते। तो इतना पवित्रता का महत्व है ना। तो इसीलिए जो प्रतिज्ञा की बात है, जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आपको कोई रस्सी से ऊपर खींचने वाला हो, आप कहीं फंस गए तो लोग कहेंगे कि आप पकड़ लो अच्छी तरह से, हम खींचते हैं आपको ऊपर, तीन चार मंजिल ऊपर आपको खींच रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि अच्छी तरह से पकड़ना रस्सी है ना, आप प्रामिज करो कि हाँ हम अच्छी तरह से पकड़ेंगे, तब चढ़ेंगे ना। और यदि कोई कहे कि चढ़िए हम कोशिश करेंगे कि आपको तो पकड़ेंगे, चढ़ेंगे ऊपर? पहले जब पक्का करेंगे कि हाँ हम छोड़ेंगे नहीं रस्सी, तब चढ़ेंगे ना। हाँ भले खींचो अभी है, क्यों? क्योंकि हम समझते हैं इस बात को कि यदि रस्सी इन्होंने छोड़ दिया तो हम कहां पहुंच जाएंगे, नीचे के बजाय, है ना। तो इतना हम ध्यान रखते हैं कि भले कुछ हो है ना, कहीं कुछ घटना भी हो गया, इंसिडेंट भी हो गया, तो क्या कहते हैं, भले गाड़ी चली जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन क्या नहीं जाना चाहिए, जान, है ना। तो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, है ना। तो हम समझते हैं कि एक ही बार है ना, एक जन्म में एक ही बार हम अगर हमने एक बार जान छोड़ दिया तो फिर इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम पक्का प्रामिज चाहते हैं कि आप पक्का प्रामिज करो, प्रतिज्ञा करो, तब हम आपके विश्वास, आपके आधार पर हम चलेंगे। इसी प्रकार जैसे हमारे लिए जान प्रिय है कि यदि जान नहीं है तो हम, अगर ये देह नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी प्रकार ये तो केवल एक जन्म की बात है जान की, लेकिन जो पवित्रता है, पवित्रता के लिए क्या कहते हैं, यदि एक बार पवित्रता में चूक हुई तो आधा कल्प सतयुग त्रेता से हम के राज तिलक से क्या होगा, चूक जाएंगे। और सतयुग त्रेता के बाद भी द्वापर और कलयुग में भी है ना, हर जन्म में हमको उस स्थान पर, उस समय पर धोखा मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान से भी अगर प्रामिज को नहीं निभा पाए तो लोग क्या कहेगा, समय भी क्या कहेगा, कि फिर किसी से भी आप अपने वादा को निभा नहीं सकते, आप पर कोई भी 100% विश्वास नहीं करेगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ना है। तो ये प्रतिज्ञा करनी है हमें, ये विधि है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाबा इस प्रतिज्ञा की विधि को अपनाते हैं, क्योंकि दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और कल्प कल्प के लिए हम वंचित हो जाएंगे, केवल आधा कल्प की बात नहीं है, पूरा कल्प ही है ना, हम वंचित रहेंगे। आधा कल्प तो देवी देवताओं के साथ हैं, आधा कल्प मनुष्य आत्माओं का भी विश्वास हमारे ऊपर नहीं होगा। तो इसलिए इतना हमें अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ रखना है ना। दूसरी बात एक इसमें और ध्यान रखने की है कि प्रतिज्ञा तो करनी है हमें, एक ध्यान और रखना है कि हमें जो पावन बनना है वो पावन भी कैसे बनना है। पावन भी बनने की विधि हमें बाबा के आधार पर होनी चाहिए, जो बाबा ने विधि बताई है ना उसके आधार पर पावन बनना है। इसीलिए कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि यदि आप सोचो कि फलाना महात्मा या विद्वान भी बोलता है ना कि ऐसे पावन बनो, ऐसे पवित्र बनो, ऐसे ब्रह्मचर्य को धारण करो, ऐसे बताते हैं, तो उसके आधार पर यदि हम पवित्र बनते हैं तो हम सोचेंगे हम पवित्र ही तो बनना है ना, थोड़ी उनके भी हम उनका भी सहयोग ले लिया हमने। तो बाबा ने कहा कि यदि किसी अन्य के आधार पर यदि आपने पवित्रता को अपनाया है तो बाबा ने कहा आप वर्षा भी उनसे ही जाकर ले लो, सीधा बाबा ने कहा। तो केवल पवित्र बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पवित्र बनने की जो विधि है वह भी बाबा के आधार पर होनी चाहिए, जो बाबा हमें बता रहे हैं, है ना। और उसकी विधि सबसे अच्छी विधि है याद की विधि, याद के आधार पर पावन बनना, है ना। एक है पवित्र, दूसरा है पावन, है ना। तो पवित्र जो है इस दुनिया में, है ना, इस धरती पर, इस ग्लोब पे जब हम पवित्रता को अपनाते हैं, है ना, हमारा भोजन, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी दृष्टि, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, तो ये पवित्रता है। दूसरा है पावन, बाबा ने कहा संगम युग पर आप पावन बनते हैं। पावन जो है पवित्रता की सुपर स्टेज है। बाबा के लिए हम नहीं कहेंगे बाबा पवित्र है, नहीं, पावन है, पतित पावन है, या पवित्रता के लिए भी क्या कहते हैं उसका सागर है। तो ये भी एक कंपेयर के लिए, एक समझाने के लिए, अदरवाइज बाबा को हम सागर भी नहीं कह सकते, उससे भी बड़ी है। जो बाबा को अगर वास्तव में कहें तो कांस्टेंट, कांस्टेंट अर्थात न जो कभी घटता है न कभी बढ़ता है, है ना। तो इसीलिए जो हमें पावन बनने की विधि बाबा ने बताया है उसके आधार पर पावन बनना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप कौन सा बंधन बांधो, किस बंधन में रहो, बाबा की याद में रहने का। हम जितना जितना बाबा को याद करते हैं, है ना, इतना हम स्वतः पावन बनते जाते हैं, है ना। और कई बार बड़ी दादी, माने दादी प्रकाश मणि, अगर कभी राउंड लगाती थी, जैसे कोई सब्जी काट रहा है तो उसकी उंगली कट गई या कुछ हो गया, तो दादी क्या कहती थी कि आप बाबा की याद में नहीं थे, बाबा की याद में नहीं थे। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि यदि हम बाबा की याद में रहेंगे तो एक तो पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे, दूसरा क्या होगा, कोई विकर्म भी नहीं होगा, और जो हमारे कर्म है ना वो परफेक्ट होंगे। तो इसीलिए याद भी कैसे करनी है, प्रॉपर वे में, है ना। जस्ट हम बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा को बिंदु देख रहे हैं, तो बाबा को बिंदु देख रहे हैं केवल, तो इससे क्या होगा, ये हमारी संपूर्ण याद नहीं है। संपूर्ण याद है कि बाबा बिंदु है, उसके साथ ही साथ हम भी बिंदु हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि जब आप एक बिंदु को देखते हैं ना तो योग टूटता है। योग टूटने का कारण ये है, हम लंबे समय तक याद में नहीं रह पाते क्योंकि एक बिंदु को देख रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर चाहते हैं कि आप लंबे समय तक योग में रहें, प्रापर में योग रहे, तो आप दो बिंदु को देखो। परमधाम में दो बिंदु हैं, दोनों बिंदु आपस में जुड़ गए हैं, चिपक गए हैं। तो एक बाबा और दूसरा कौन है, दूसरी बिंदु मैं। आप इस विधि से बैठ के देखो, आपको ज्यादा कुछ बात करने की भी जरूरत नहीं है याद में। कई सोचते हम याद बैठे हैं बाबा से, जैसे कोई छोटा बच्चा है वो माँ के पास जाता है, मान लो 6 मंथ का है, 9 मंथ का, तो बच्चा बोलता है क्या कि अभी हमको ये कर दो, हमको ये करो। जो भी करना है कौन करती है, माँ ही करती है, बस अपने हवाले कर दो। आप बाबा के पास चले जाओ, बाकी काम किसका है, बाबा का। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आपको बैठना भी नहीं आता क्या, अव्यक्तवाणी में बाबा, कि बैठना भी नहीं आता क्या, आओ और मेरे पास परम धाम में कैसे बैठ जाओ, बिंदु बनकर। तो मेरे पास बिंदु बनकर बैठ जाओ। तो इस विधि से यदि हम बाबा को याद करते हैं तो हम पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनेंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान रहे कि हमें जो पवित्र बनना है, पावन बनना है, वो याद की विधि से बनना है, है ना। तो इतना हमारा अटेंशन हो याद का। फिर बाबा ने और क्या कहा कि आजकल जन्मदिन आदि मनाते हैं, है ना। तो जन्मदिन आदि मनाते हैं क्या है, फैशन है। तो बाबा ने कहा इससे कुछ फायदा है, फायदा है किसी का, जी किसी का फायदा नहीं, क्यों, बिजनेस वालों का तो फायदा होगा ना, जो कार्ड बनाते हैं, जो दुकान है, किसी का तो फायदा होता होगा, नहीं है, फायदा होता है ना, जो कार्ड बनाते हैं, केक बनाते हैं, कितनी चीजों के। तो वास्तव में बाबा ने कहा कि ये जो बेनिफिट है या ये सब कुछ है क्षणिक है, है ना, और पूरी समझ के साथ नहीं मनाते। वास्तव में बाबा ने कहा यदि किसी का हम जन्मदिन भी मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, समझ के साथ ना, उसको समझे ना क्या है इसका अर्थ, है ना। और यदि किसी का जन्मदिन है तो उससे हम क्या प्रेरणा लेते हैं, उससे हम क्या अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, इस आधार पर यदि हम मनाते हैं तब तो कहेंगे कि सही है, अदरवाइज हमने केवल तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आजकल मनाते हैं जयंती या जन्मदिन, लेकिन उनको तो जानकारी ही नहीं ना, अनजान है इससे। मान लो बाबा का भी जन्मदिन मनाते हैं, उनको तो नहीं पता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पहले हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए, फिर हम मनाएं उसको, मनाएं अर्थात उसको अपने जीवन में अब इम्बाइब करें, धारण करें। एक बात और बाबा ने कहा आज, बहुत बड़ी बात कहा बाबा ने, कि देवताएं क्या हैं, क्या हैं देवताएं, कौन बताएगा, देवताएं योगी हैं, था ना आज की मुरली में, तो देवताएं योगी हैं। ये किस आधार पर कहेंगे कि देवताएं योगी हैं, कौन बताएगा, क्यों योगी हैं, वो योग तो नहीं लगाते हैं ना, कि देवता योग लगाते हैं, तो योग नहीं लगाते हैं फिर क्यों योगी कहते हैं, हाँ आत्म अभिमानी हैं आप कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य बात ये है कि योग लगाने के बाद जो प्राप्ति होती है ना, हम योग क्यों लगाते हैं, कि हम भी बाप समान बन जाए, हमारे पास हमारे अंदर भी देवताओं की क्वालिटी आ जाए, इसके लिए करते हैं ना। तो वास्तव में यह सब जब क्वालिटी आ जाती है तो ये किसका रिजल्ट है, योग का। तो इसलिए कहेंगे योगी, ऐसा नहीं कि हमेशा आप योगी करते रहो, योग करते रहो खूब और किसी पर क्रोध भी करते रहो तो लोग क्या कहेंगे, योगी हैं, कहेंगे योगी। लेकिन अगर आप योग नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपका व्यवहार बहुत उच्च है, बहुत श्रेष्ठ है, तो लोग क्या कहेंगे, आपसे संतुष्ट होंगे ना, आपको दुआएं देंगे ना, है ना। तो इसीलिए बाबा ने आज के ब्लेसिंग में भी क्या कहा है ना, और इसको गुलजार दादी भी कई बार कहती थी कि जो हम चेक करते हैं ना, हम सोचते हैं चलो आज दिन भर ऐसे चलते हैं, शाम को चेक कर लेंगे, तो कहते हैं कि जब चेक करेंगे शाम को तो चेंज कब करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा कि नॉलेज की शक्ति के द्वारा हमें क्या करना है, नॉलेज की शक्ति के द्वारा जो हमारी कर्मेंद्रियां है ना, आंखों को देखें, कानों को देखें, जीभ को देखें, एक एक को देखें कि हमने कुछ भोजन भी किया, कोई अट्रैक्शन हुआ जीभ के कारण तो नहीं, कोई गीत हमें खींच तो नहीं रहा है कानों से सुने, हम कुछ देखने की हमें इच्छा तो नहीं हो रही है। तो इनको अगर हम हुई क्या ऐसी, तो दिन में चेक करें कि हम कभी इनके बस तो नहीं हुए। तो बाबा ने कहा कि इनका जो है दरबार लगाओ, राज दरबार लगाओ, और फिर इनको चेक भी करो। चेक किया, अब चेक करके छोड़ नहीं देना है। बाबा ने कहा चेक के साथ क्या करना है, चेंज। तो चेक के साथ जब हम चेंज करते हैं तब हम जो है सफल स्वराज्य अधिकारी बनते हैं।